पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की तरह हो गई है। इसमें लगातार दिलचस्प नाटकीय मोड़ आते जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उद्धव ठाकरे की सरकार में भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में आई रुकावट का आरोप लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि नई सरकार राज्य को दोबारा प्रगति के पथ पर ले जाएगी।
2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने आए एकनाथ शिंदे ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं।
आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ही मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था। इसके बाद से ही भाजपा और शिवसेना के बागी गुट की सरकार बननी तय मानी जा रही थी। राज्य की राजनीति में कई और चौंकाने वाले मोड़ आ सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष उपस्थित होंगी। एनसीपी नेता शरद पवार को भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया है। इस बीच कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने का आरोप भाजपा पर लगाया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा ने अनैतिक रूप से एक और सरकार को गिरा दिया। इसके पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बगावत के बाद भाजपा की सरकार बन चुकी है। और अब चर्चा असम में आई बाढ़ की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस बाढ़ की चपेट में आए 2,500 से अधिक गांव में जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगभग 30 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा कहते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है।
अभी स्थिति सुधार है, लेकिन जुलाई महीना में भी बाढ़ आते हैं, तो फिलहाल थोड़ा वाटर लेवल रिसीड हुआ है, लेकिन जब अरुणाचल भूटान में बरसात होगा फिर दोबारा यहाँ होने का संभावना होता है। तो इसीलिए हम लोग एक लाइन मार के चलता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 अगस्त, तो यही 3 महीना हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है।
आपको बता दें कि इस बार की बाढ़ में अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के बाद चर्चा राजस्थान की, जहां सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए सरकार को मशक्कत करनी पड़ रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति की बर्बर हत्या के बाद कई शहरों में तनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कन्हैया के परिवार के साथ मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मृतक कन्हैया के बेटे इस मुलाकात के बाद कहते हैं,
मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब देने का आश्वासन भी दिया है, तो सर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हमने हमारा सेल्फ डिफेंस तो मांगा ही है कि हमको तो कम से कम प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे फादर को प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हमको तो मिलना ही चाहिए, तो इसका भी आश्वासन तो दिया है। बाकी का ये है कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनको तो फांसी की सजा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो विदाउट फांसी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, फांसी की सजा ही उनके लिए सही है।
राजस्थान को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा देश में सांप्रदायिक तनाव को लेकर कहती हैं,
यहाँ पर आप राजनीति में धर्म को लाते हैं, भगवान को लाते हैं, उसी का मैं माफी चाहूंगी। नतीजा जो है वो उदयपुर में हमें दिखा है। राहुल गांधी जी जब कहते हैं देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, तो उसको गंभीरता से इस सरकार को लेना होगा, ना कि उसका मखौल उड़ाना होगा। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो आपके सामने है। आज यही जो चीजें चल रही हैं कि आप राजनीति में संविधान और कानून का राज होना चाहिए, लेकिन आप उसमें धर्म को लाकर धर्म के नाम पर जो पूरा माहौल खराब किया जा रहा है उसी के नतीजे हैं जो हिंसा और आतंकी घटनाएं हो रही हैं। धार्मिक भावनाएं दोनों तरफ हैं।
कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच दोनों आरोपियों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राज्य में एहतियात के तौर पर आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। धारा 144 भी लागू रहेगी। और अब बात पंजाब की, जहां महिलाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। कम से कम सरकार के दावों पर भरोसा करें तो जल्द ही राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने मिल सकते हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को संविदा कर्मचारियों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे 36,000 संविदा कर्मियों को सीधे फायदा मिलेगा। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।